और जो मैंने आपको पिछला सबक पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि अब उम्मते मुस्लिमा को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि तुमने कैसे दुनिया में रहना है, कैसे एज उम्मत तुमने चलना है। तो ये इंस्ट्रक्शन सूरह बकरा में भी दी गई थी। पहले आपको याद करा दूं कि वफदे नजरान के साथ जो बात हो रही थी, ईसाइयों का जो वफद आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने रखी जो अहले किताब की जो उनके शकुक व शुभात थे, जो एतराजात थे, उनके जवाबात, और उनको मुबाहले की भी फिर दावत दी थी। आपको याद होगा, ये हम सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकेंड पोर्शन में उम्मते मुस्लिमा को हिदायत दी जा रही है, और उसके बाद थर्ड पोर्शन जो 120 आयत के बाद शुरू होगा उसमें हम ओहद के बारे में पढ़ेंगे। ये मदनी सूरत है, अभी आगे इंशाल्लाह मदनी सूरतें चलनी है। अभी सूरह निसा भी मदनी सूरत, सूरह माईदा भी मदनी सूरत, फिर सूरह नाम में जाके हम मक्की सूरत पढ़ेंगे। तो उनमें भी आप देखेंगे अहले किताब की इस किस्म की बातों को हाईलाइट किया जाएगा। और इसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये है कि उनको पहले ये मनसब दिया गया था कि वो दुनिया की इमामत करें। इमामत से मतलब क्या, यानी दुनिया में अल्लाह ताला के दीन के पैगाम को पहुंचाए। मगर उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया तो उनको हटा दिया गया इस ओहदे से। मसलन किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, वो अपना काम ही नहीं करता अगर, तो क्या होगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा। किसी को किसी जगह का वजीर बनाया जाए, किसी महकमे का वजीर बनाया जाए, और वो उस महकमे में कोई काम ही ना करे, बस ये पैर पे पैर रख के बैठा रहे और कहे मैं तो वजीर बन गया और इसी के ऊपर खुश होता रहे, तो इस तरह तो नहीं काम चलता ना। जब भी कोई ओहदा मिलता है तो उसके साथ कोई जिम्मेदारी आती है, ऐसा है कि नहीं है? चाहे वो वजीर है, चाहे वो सदर है, चाहे वो कोई भी है। आप देखिए, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, क्या कोई जिम्मेदारी होती है, या वो बस झंडे वाली गाड़ियों में घूमते रहें और अपने तमगे लगा के फिरते रहें अपने नाम की तख्ती के, मैं तो प्रिंसिपल हूं, या मैं तो वजीर हूं, या मैं तो बड़ा सदर हूं, ये करते हैं? नहीं ना, जिम्मेदारियां होती हैं हर ओहदे के साथ। ये भी जो ओहदा उनको मिला था तो उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। हम पिछले सबक से देख रहे हैं, हमने पढ़ा, आपने आयत 104 पे गौर किया, जो पूरा हफ्ता होता है ना आपके लिए गौर करने के लिए होता है, इन आयात को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये नहीं होता है क्लास के बाद बस कुरान भी बंद किया, नोट्स भी बंद किया, अगले जुमे को खोल लिए, ऐसे नहीं। इल्म इस तरह नहीं आता, इल्म आता है जब आप उसको बार बार पढ़ते हैं। इमाम बुखारी से किसी ने पूछा था कि आपको कैसे हाफजा इतना है, तो उनने फरमाया बार बार उसका दौर करने से। तो जब आप बार बार कोई चीज पढ़ेंगे ना तो वो आपके अंदर जज़ब हो जाएगी, फिर आपको गौर व फिक्र करने का भी पता चलेगा। तो अपने साथियों के साथ उन चीजों को डिस्कस किया कीजिए जो आपने जुमे को पढ़ी है, कि देखो हमने ये आयतें पढ़ी, इससे तुम्हें क्या पता चला, इसने तुमने क्या सोचा, कैसे हम इसके ऊपर अमल करें। तो ये एक तो आपको इससे हेल्प मिलेगी कि दूसरे के क्या व्यूज हैं, दूसरे के पास क्या आइडियाज हैं, इसीलिए हमने ग्रुप एक्टिविटी भी इसीलिए रखी हुई। वो कोई काम नहीं है, बल्कि वो जब इंसान पढ़ता है ना तो उसका दिल करता है कि मैं भी अपनी कोई बात शेयर करूं, तो ये आपकी शेयरिंग होती है इसमें। आप अपनी दोस्तों के साथ भी करें, और जब इंशाल्लाह ताला हम ख्याल एक ही माइंडसेट के दोस्त होते हैं तो बड़ा फायदा होता है, फिर इंसान खुल के उनके साथ ये बातें कर सकता है। हर एक के साथ आप शायद नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो जरूर इनको शेयर किया कीजिए। आप देखिए, आप हमने आयत 104 में कितनी जबरदस्त बात पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने 3 पॉइंट्स हमें दे दिए, एक्शन के लिए एजेंडा दे दिया, ये आपका एजेंडा है, ये आपने एक्शन करना है। उन 3 पॉइंट्स पे आपने गौर किया कि तदाउना इलल खैर कैसे करेंगे आप, सूरह नहल आयत नंबर 30 में कुरान को खैर कहा गया है। तो ये ऐसे ही बात नहीं है कि भाई ऐसे ही हमने बना लिया कि भाई देखो तो बस ऐसे ही चीजों को कह देते हैं कि भाई कुरान की तरफ दावत देना, तो आप कैसे दावत देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये एक जिम्मेदारी लगा दी ना, अगर फलाह पानी है तो लोग कहते हैं नहीं बस आप लोगों का तो एक ही काम है, या ये पता नहीं कोई काम ही नहीं है, ये ऐसे ही करते रहते हैं, या इनको ये कहां से इसकी दलील है? तो इसकी दलील कुरान से मिल गई, और इमाम मालिक ने फरमाया था कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इसलाह भी उसी तरह मुमकिन है जैसे पहले हिस्से की इसलाह हुई थी। और पहले हिस्से की इसलाह कैसे हुई थी? कुरान के जरिए। ठीक है, तो आज भी कुरान से दिल बदलेंगे, कुरान से माशरे बदलेंगे अगर हम चाहते हैं कि इसलाह हो, वरना इसलाह इसके बगैर नहीं हो सकती। तो ये हमने सोचना है कि हमने कैसे करना है ये काम, क्या इफेक्टिव टूल्स हो सकते हैं इसके लिए, किस तरह किया जाए, किसी को दावत दी जाए, किसी के पास जाया जाए, किसी को कॉल की जाए, कहीं कोई एड लगाया जाए, कहीं क्या करें हम कि चैन से बैठ नहीं जाना कि बस आयतें पढ़ ली और उसके बाद चलो आगे चलो अगली आयत में क्या है, नहीं। फिर उसके बाद हमने कोई, आपको इसमें फेमिलियर आयत नजर आई है जो आपने पहले पढ़ी हुई थी पिछले सबक में या पहले कभी सुनी थी? 102 आयत कभी सुनी हुई आपने पहले? हाँ, जिन लोगों ने भी कोई निकाह अटेंड किया हो, उनकी अपनी शादी हुई है, शादीशुदा जो लोग हैं या जिन्होंने किसी का निकाह अटेंड किया है, तो उन्होंने कभी सुनी है? हाल उस वक्त तो कोई और ही ख्याल होते हैं कि इंसान गौर ही नहीं करता कि वो निकाह के खुतबे में क्या बोल रहे हैं। तो अब याद रखिएगा, निकाह के खुतबे में ये वाली आयत पढ़ी जाती है, और इस आयत में भी हमें बड़ा ही एक जबरदस्त, हमें एक बात बता दी गई, हमें एक जिम्मेदारी दे दी गई कि देखो पूरी जिंदगी तुमने इसी दीन पे रहना है, फरमा बरदारी की हालत में मुस्लिम बन के रहना, तभी तो मौत भी मुस्लिम की हालत में आएगी। क्योंकि इंसान की जो दुआ होती है, हम दूसरों को भी यही कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिए, खात्मा बिल खैर की दुआ करें, तो खात्मा बिल खैर की दुआ हम खुद भी करते हैं, कराते भी हैं। खात्मा बिल खैर कैसे होगा जब हम अपनी पूरी जिंदगी फरमाबरदारी में गुजारेंगे, तो मौत भी इंशाल्लाह उसी में आएगी। तो ये एक भारी मुतालबा है जो हमसे किया गया है कि तुमने सारी जिंदगी फरमाबरदारी में गुजारनी है ताकि मौत भी तुम्हें आए, तो ये ना हो कि नाफरमानी की किसी हालत में आ जाए, वो भी फरमाबरदारी में आनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट आयत 103 पढ़ी थी, और उसमें हमें कहा गया कुरान को मजबूती से थाम लो। कैसे थामेंगे? पकड़ लें क्या हम सारे कुरान को? जोर से पकड़ के रखा हुआ आपने क्या? नहीं, मतलब ये है कैसे थामेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? किसी को पता है कैसे थामेंगे? इसके हकूक अदा करके, इसका हक देके। उसके हकूक क्या है? 5 हकूक हैं इसके। पहला हक क्या है? कुरान पर ईमान लाना। दूसरा हक है इसकी तिलावत करना। तीसरा हक है इसको सीखना समझना, जैसे कि हम इन कोर्स में कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान हम कुरान पे लाए हुए, इसकी तिलावत भी करते हैं, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। फिर चौथा इसका हक है इस पे अमल करना, इसको नाफिज करना, यानी इसको इसको अमल में लेकर आना, इसका निफाज करना। पांचवा है कि इसको फैलाने की कोशिश करना जो तदाउन इलल खैर में है। तो ये हकूक है इसके, जिसकी हम कोशिश, सारी की सारी ये कोशिशें हम कर रहे हैं इन कोर्स में। तो आप लोग पूछते हैं ना कि क्या ये फर्ज है, क्या इसको सीखना फर्ज है, पढ़ना फर्ज है, समझना फर्ज है, इस पे अमल करना फर्ज है, इसको फैलाने की कोशिश करना फर्ज है, क्या ये फर्ज है? ये फर्ज है कि नहीं है? जब अल्लाह ताला फरमा रहे वा तसीमू, ये क्या है? अमर है, हुक्म है, मजबूती से पकड़ लो। सिर्फ पकड़ना नहीं है, मजबूती से पकड़ लेना। ठीक है ना, मजबूती से, कि जाने ना पाए। ये नहीं कि रमजान पकड़ना। और तफर्रके की जो यहां पे कहा गया कि उससे बचो, तफर्रके की भी वजह क्या है? मुसलमानों के ना जवाल की दो ही वजूहात हैं। नंबर 1, कुरान को छोड़ दिया। नंबर 2, आपस की फिरकावारियत, आपस में बटे हुए। और कुरान को छोड़ने की वजह से ही असल में आपस में भी ये तफरकाबाजी है, ये जो
टूटे हुए हैं, ये इसी वजह से है कि कुरान को छोड़ा हुआ। तो बेसिक वजह ही है कुरान को छोड़ देना। आज उम्मत का हाल देखें, आपकी 99% आबादी ऐसी है कि उन्होंने सारी जिंदगी में कुरान को पूरा एक दफा भी समझ के नहीं पढ़ा हुआ। आप अपने निजामे तालीम में देख लें कुरान कितना है, कहाँ है कुरान? आज पूछते हैं ना आप सब लोग कि हाय क्यों है उम्मत फिरका फिरका, क्यों ये इत्तेहाद क्यों नहीं है, हाय काश इत्तेहाद हो जाए, काश ये हो जाए। वजह उसकी ये, अल्लाह की रस्सी कोई नहीं थामा हुआ। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। इल्मी इख्तलाफ मैंने आपको बताया था ना, वो अपनी जगह है, वो उससे कोई मसला नहीं होता। तफरका बाजी, कुफर के फतवे, दूसरे को कहना कि नहीं वो तो सही है, नहीं हम ही है बस सारा कुछ, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी। तो ये कुरान को छोड़ने की वजह है तफरका बाजी, जो हमारे जवाल की आज वजह बनी है। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट आयतें पढ़ी हैं लास्ट टाइम, इसलिए उनके ऊपर जरूर आप गौर करिएगा। और तफरका बाजी का और आपस में इख्तलाफ का, जबकि हक सामने आ जाए, उसकी सजा क्या है? अजाबुन अदीम। और ऐसे ही लोगों के चेहरे पर सियाह होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समरी थी आपके लास्ट लेसन की। आज का जो लेसन है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी उसी की कंटिन्यूएशन है। और ज्यादा हम इस चीज के ऊपर आज बात करेंगे कि हमने इन आयात को अमल में कैसे लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे इसलिए नहीं हुए कि हम बस ये कुरान के, देखिए मैंने आपको जो हकूक बताए समझ लेने के बाद क्या है, बस बैठ जाए समझ लिया, हाँ बस हमें समझ आ गई अच्छी तरह, नहीं आगे बढ़े। अमल, हम अमल करना चाहते हैं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आयत नंबर 110, कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम हो बेहतरीन उम्मत। अब यहां तक बात बड़ी मजे की लगती है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ओ हम बेहतरीन उम्मत हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई ना। अब इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिल गई कि आपको डिक्लेयर कर दिया गया कि यू आर द बेस्ट। और उम्मत क्या होती है? उम्मत वो नहीं होती कि जो सारे एक ही लैंग्वेज बोल रहे हो, एक ही इलाके के रहने वाले। उम्मत वो होती है जो एक नजरिए की होती है, एक उनकी गोल होता है, एक उनका मकसद होता है, वो उम्मत होती है, वो उम्मत बनती है चाहे वो कहीं पे भी हो। आज उम्मत नहीं है ना, आज ग्रो है, आज कौमियतें हैं। कौमियत मेरी, मैं इस कौम, वो उस कौम से, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि कौम क्या, आपका नाम क्या है, मगर उसके ऊपर, उससे अबव है उम्मत। हम कौम को ही सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं ना, कि बस उम्मत को छोड़ो कौम में। अब हमारी कौम का बंदा चाहे वो ये हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो कुछ है, मगर हम बस एक कौम के, ये नहीं। उम्मत फर्स्ट है और कौमें बाद में है। ठीक है, तो अब यहां पे जहां हमें पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा को कहा गया कि वो बेहतरीन उम्मत है, वो क्यों बेहतरीन उम्मत है, क्या क्या इनके अंदर कमाल क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि ये बेहतरीन उम्मत कुरान ने डिक्लेयर किया, खुद नहीं हम कह रहे कि अच्छा हम बेस्ट हैं, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में जो फजीलतें फरमाई कि जो मुझे दिया गया है, वो नेमतें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई थी। उनमें एक बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये थी कि मेरी उम्मत सब उम्मतों से बेहतर बनाई गई है। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। इसी तरह एक और फजीलत आपको बता दूं, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाह हमें उनमें से कर देना। तो जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे,
सब एक जैसे रंग के होंगे। मैंने अपने रब से गुजारिश की कि अल्लाह इस तादाद में और इजाफा फरमा दे, तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया हर एक के साथ 70,000 और भी, यानी हर एक के साथ 70,000 और भी, तो कितने हो गए? तो 70,000 सिर्फ होते तो कम होता शायद, लेकिन हर एक के साथ और 70,000 जाएंगे तो कितने हो गए? सुभान अल्लाह, मुस्नद अहमद की ये भी रिवायत है। और फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत की 120 सफ़े हैं, 120 सफ़े हैं अहले जन्नत की, जन्नत में जितने जाने वाले ना उनकी 120 सफ़े बनेंगी, जिनमें से 80 सफ़े मेरी इस उम्मत की हैं, 80 सफ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया तुम अहले जन्नत के चौथाई होगे, यानी 1/4। तो सहाबा ने अल्लाह अकबर कहा, फिर फरमाया बल्कि तुम उनका 1/3 होगे, फिर फरमाया, फिर सहाबा ने अल्लाह अकबर कहा, फिर फरमाया बल्कि तुम निस्फ होगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 2/3 हो गए, यानी 2/3, यानी मेजॉरिटी जन्नत में जाने वालों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होगी। और बुखारी में, मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में हम सबसे आखिर में आए और जन्नत में सबसे पहले जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले कोई उम्मत जन्नत में नहीं दाखिल हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं अंबिया पर जन्नत में दाखला हराम है, और जब तक मेरी उम्मत ना दाखिल हो जाए दूसरी उम्मत पर दाखला जन्नत में हराम है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत है इस उम्मत की। तो ये मैंने और आपने कोई हासिल नहीं की कोई एप्लीकेशन दे के, अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत में पैदा किया, इसके ऊपर हमें इतना शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो निस्बत है ना, जरा सी भी निस्बत, उसके ऊपर भी देखें ये है, ये मिलने वाला है, किसी का कमाल नहीं है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत की वजह से कि ये आपकी उम्मत है। अल्लाहु अकबर। तो फिर ये तो थोड़ी सी मैंने आपको फजीलतें बता दी इस उम्मत की, मगर अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदे को सदर बनाया जाता है, एक बंदे को वजीर बनाया जाता है, तो ठीक है वो बहुत बड़ा ओहदा है, किसी मुल्क का सदर बन जाना, किसी को बादशाह बना दिया जाता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर क्या उसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या नहीं? होती है ना, जितना बड़ा ओहदा उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा होती हैं, उसको फैसले करने, उसको काम चलाने के लिए उतनी बड़ी कोशिश, मेहनत, जिम्मेदारी के साथ चलना पड़ता है ना। तो ये खैरा उम्मतन ऐसे ही नहीं है, आगे भी सुने, फिर हम तो यहां तक सुन के बस ओ अल्लाह अकबर और बस हम तो क्या बन गए, उसके बाद आगे तो देखें। उखरिजत लिन्नास, तुम निकाली गई हो लोगों के लिए, किसके लिए? लोगों के लिए तुम निकाली गई हो, क्या करने के लिए? यानी लोगों के ऊपर तुम ये नहीं कहा कि आके लोगों में तुम्हारे ऊपर इतना तुम्हारे लिए फखर की बात है, तुम बस क्या बन गए हो, तुम लोगों में बेस्ट हो गए, नहीं, तुम निकाली गई हो लोगों के लिए, क्या करने के लिए? यानी लोगों में क्या करना है? तअमुरूना बिल मारूफ, इसलिए तुम बेस्ट हो कि तुम लोगों में भलाई की दावत देते हो, हुक्म देते हो। वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से तुम रोकते हो। वतुमीनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर तुम्हारा ईमान है, वैसा ईमान, ऐसा ईमान नहीं कोई पैदाइशी ईमान, हमारा तो नाम मुसलमानों वाला तो बस हमारा ईमान हो गया, नहीं, बल्कि तुम्हारा ईमान जैसे रिक्वायर्ड है, ईमान जैसे ईमान होना चाहिए, ठीक है? तो ये ईमान बाद में क्यों आया? ایمان کو تو ہمارے نزدیک تو پہلے سب سے آنا چاہیے، اس لیے کہ جب ایمان ہوگا تو یہ کام مکمل ہوں گے، ایمان کے بغیر یہ کام بھی کوئی کرے تو کوئی یہ کام کا فائدہ نہیں، ایمان کے ساتھ ہے یہ کام، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان اس لیے کہ پہلے دو کاموں کی وجہ سے ہی مسلمان دوسری امتوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو اور بھی کرتے تھے، مگر یہ دو کام ہیں جن کی وجہ سے تمہاری فضیلت ہے دوسروں پر، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، انہوں نے حج کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو یہ دو شرائط پوری کرتا ہے وہی ہے جو کہ اس خیر امت میں سے ہے، جو یہ دو شرائط پوری نہیں کرے گا اس کا پھر خیر امت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، اور جو ایمان باللہ، تین شرائط ہو گئی، جو ان کو پوری کرتا ہے وہی ہے جو خیر امت میں سے ہے، اور جو نہیں کرتا تو پھر وہ یہ اس کو نہ سمجھے کہ میں کوئی وہ یہ تاج پہن کے سمجھے کہ بھئی میں خیر امت میں سے ہوں، وہ خیر امت میں سے نہیں ہے، وہ اس بہترین امت کا پارٹ نہیں ہے، کیونکہ اس بہترین امت کی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شرائط بتا دی، یہ کنڈیشنز بتا دی، تو جو اس پوزیشن کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو اس کو یہ کام کرنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر ان کاموں کی کیے ہوئے کوئی انسان اپنے آپ کو ان میں شامل سمجھ لے، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ کام کتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ کام فرض ہیں کہ سنت ہیں کہ نفل ہے کہ کیا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، دیکھیں جب کہہ دیا گیا نا کہ تم بہترین امت ہو اسی وجہ سے کہ تم یہ کام کرتی ہو، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، اب حضرت عمر کے اس قول سے سب کو سمجھ آ گئی نا کہ بہترین امت بننے کے لیے یعنی آپ کو یہ کام کرنے ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ اس کا پارٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ کیا ہوتا ہے معروف، کیا ہوتا ہے منکر، اور امر کیسے، حکم کیسے دیتے ہیں، کیا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں ساروں کو ایک ٹیچر کی طرح یا ایک پولیس والے کی طرح یا ایک فوجی کی طرح بس کھڑے ہو کے لوگوں کو سیدھا کر دیں، ایسے کرنا ہی؟ امر کے سٹیجز ہوتے ہیں، امر حکم کرنے کو بھی کہتے ہیں، حکم دینا بھی ہوتا ہے، نصیحت کرنا بھی ہوتا ہے، ایڈوائز کرنا، کسی کو انکریج کرنا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کسی کو انکریج کر کے بھی اس کی حوصلہ افزائی کر کے بھی اس کو معروف کے اوپر دعوت دیتے ہیں، آپ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کرتے ہیں، کسی کو شاباش دے کے بھی کرتے ہیں، یعنی اٹ آل ڈیپینڈز کہ آپ کس طرح سے امر بالمعروف، کس کے ساتھ کر رہے ہیں بات، آپ کا کتنا دائرہ کار ہے، آپ کا کتنی اتھارٹی ہے، کتنا آپ کا اختیار ہے، آپ دیکھیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی دوست کے ساتھ نہیں کر سکتے، جو اپنی دوست کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ باہر کسی اور کے ساتھ مسجد میں کوئی آتا جاتا اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، جو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کسی اور غیر مسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو امر کے بھی یاد رکھیے ڈفرینٹ یعنی سٹیجز کہہ سکتے ہیں یا ڈفرینٹ فارمز کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ فارمز ہوں گے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ کی کتنی جورسڈکشن ہے، آپ کی کتنی اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ والدین کے ساتھ اس طرح امر بالمعروف کو بھی والدین کو بھی کرنا پڑتا ہے، آپ نہیں کر سکتے اس طرح ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے، تو بعض جگہ یہ ریکویسٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امر کو سمجھے پہلے تو امر کیا ہے، اور بعض دفعہ صرف اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے ہی حکم دینا ہوتا ہے، یعنی انسان اس حد تک بھی آ جاتا ہے کہ آپ اپنا آپ خود ہی کرتے رہتے ہیں تاکہ دوسرے کو ایک طرح سے آپ حکم ہی دے رہے ہیں، جب آپ خود نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو جن کو آپ نہیں کہہ سکتے، جو
ऐसी आपकी अथॉरिटी ही नहीं है वहां पे, उनको आपने नमाज पढ़ के दिखा दी कि ये आप एक तरह से उनको एक दावत दे रहे हैं। तो दावत देना भी अमर है, किसी को दावत देना, दावत से मतलब खाने की दावत नहीं, भलाई की दावत, ठीक है। तो किसी को इसकी दावत देना ये अमर बिल अमर है, ठीक है। तो पहले हमने अमर को समझा, अब आए मारूफ की तरफ, जानी पहचानी भलाई, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक है, सच बोलना है, ईमानदारी है, रिश्तेदारों के साथ भलाई है, यतीम के साथ हुस्ने सलूक है, गरीब की मदद करना है, मिस्कीन बेवा की मदद करना है, ये और भलाई सबसे बड़ी भलाई क्या है, तौहीद, एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। और वह तन्हाउन और तुम रोकते हो, अब रोकने का भी यही अमर, अमर का उलट नहीं है, ठीक है। अब रोकने के लिए भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, रोकना भी हर एक को, ये नहीं खड़े होते डंडा पकड़ के खड़े हो जाए रोकना, कहीं प्यार से रोकना है, कहीं डांट के रोकना है, कहीं किसी को कोई ऐसी बात कह के रोकना है जो कि उसके लिए उसके दिल को छू जाए। तो रोकने के भी डिफरेंट तरीके होंगे, वो भी डिपेंड करता होगा कि आप किस अथॉरिटी को रखते हैं। ये मैं इतना एक्सप्लेन पता है क्यों कर रही हूँ, मैं वैसे भी जा सकती हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है कि मैं पूरा सबक आपको 10 मिनट में करा दूं, लेकिन इसलिए कि जब आपने अमल करना होगा तो ये बातें अगर आपको पता होंगी तो तभी करेंगे ना। अगर पता ही नहीं होगी, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर आज हमने पढ़ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, और आपको पता है नहीं करना क्या है, तो क्या करेंगे फिर। तो ये इसलिए कि प्रैक्टिकली इसको हमने अप्लाई करना है, इस वजह से सिर्फ हमें इतनी डेप्थ में जाना पड़ता है, वरना कोई मुश्किल नहीं है, ये अल्फाज भी मुश्किल नहीं है, चलते जाओ बस खत्म करो सबक। तो अनिल मुनकर, मुनकर भी जानी पहचानी जो बुराई है, इंसान की तो तबीयत अंदर से कहती है कि एक खुदा है, सबसे बड़ा मुनकर तो क्या है, शिर्क, शिर्क, और उसके बाद सारी ईवल्स, सारी बुराइयां, इनको इंसान की अकल भी कहती है, जो शरीयत भी कहती है कि ये बुरी चीज है, उसमें सारी बुराइयां आ गई, सारी बेहयाइयां आ गई, सारी फहाशियां आ गई, बेईमानियां आ गई, झूठ आ गया, सूद आ गया, जिना आ गया, जितनी भी बुराइयां। तो इसमें छोटी से लेके बड़ी तक सार बुराई आ गई। इवन ये कि आप किसी को किसी जगह पे कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं, ये मुनकर है। इंसान की तबीयत कहती है ना कि देखो यहाँ पे गार्बेज फेंक फेंक के, शहरों के हाल बुरे किए हुए, खाली प्लॉटों में फेंके हुए, हमारे मुल्कों में तो कहाँ कहाँ फेंके हुए, क्या उनसे बर्बादियां होती हैं बाद में जब बारिशें होती हैं। तो मुनकर क्या है, उससे रोकना दूसरे को। तो मुनकर सिर्फ ये नहीं है कि नमाज कोई नहीं पढ़ा तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों नहीं पढ़े नमाज, ये सिर्फ मुनकर नहीं है, ये मुनकर में सारी बुराइयां आ गई, ठीक है। तो आप उसको जब रोकते हैं, जब आप उसको कहते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो, एक छोटी सी की बात है ना, आप इसको शायद आपने कभी सोचा ही ना, आप ट्रैफिक है, अब आप उसके अंदर सही नहीं कोई चल रहा, मुनकर है, आप उसको रोकते हैं कि नहीं भाई तुम अपने रास्ते के अंदर चलो, दूसरे का रास्ता ना काटो, जिधर से ट्रैफिक आ रही है उधर से ना जाओ, मुनकर है। देखो रिश्वत ना दो, रिश्वत आपने दूसरे को रोका, ये मुनकर से रोका है। तो इसके भी दर्जे हैं, याद रखिए, जैसे मारूफ के लिए दर्जे हैं, इसी तरह इसके भी दर्जे हैं। और देखिए भलाइयों के काम तो सारी दुनिया करती है, बड़ी भलाइयों के काम कर रही हैं, बड़े वेलफेयर के, हो सकता है लोग यतीम खाने बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, लेकिन मारूफ में ना सारी भलाई के काम आ जाते हैं। जो डिस्टिंक्शन है, जो खास क्वालिटी इस उम्मत की है, जो किसी और के अंदर नहीं है। और मैंने जैसे आपको ये बताया कि जब आप तौहीद की तरफ दावत देते हैं तो ये सबसे बड़े मारूफ की दावत है, जब आप किसी को गुनाहों से बचने की दावत देते हैं तो ये सबसे बड़ी दावत है, इसलिए क्योंकि ये उसकी आखरत को संवार देगी। कि ना एक तो है वो भलाई के काम दुनिया के सिर्फ कर रहे हैं, आप इंसानियत की भलाई के लिए उठे हैं, आप स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, यतीम खाने बनाने, ठीक है, अच्छे हैं, भलाई के काम है, مگر کسی کی آخرت کو سنوار دینا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے وہ سب سے بڑی بھلائی ہے کسی کے ساتھ. تو یہ کام کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے, یہ اللہ نے ذمہ لگایا ہے, یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے. جس پوزیشن میں بھی امت مسلمہ ہوگی, جس پوزیشن میں بھی آپ ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, آپ کے اوپر یہ ذمہ داری پڑتی ہے. دیکھیں, یاد رکھیے ایک بات, اگر آپ یہ کہتے ہیں میں تو نہیں نا یہ کام کرتی, میں تو نہیں یہ برائی کرتی, تو یہ صرف کافی نہیں, بلکہ گناہ کو نہ کرنا الگ بات ہے اور گناہ سے نفرت کرنا یہ ایک الگ بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے گناہ نہیں کرتے مگر وہ ان گناہوں سے نفرت بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں اوکے ہے, سو واٹ. آج آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ جو ہوموسیکشولز ہیں ان کے بارے میں, یعنی قوم لوط والا عمل جو کرتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں بہت سارے مسلمان ہی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے نا, لیکن ہم اس کو برا بھی نہیں جانتے, تو کیا ہو گیا اگر کوئی کرتا تھا. تو کوئی ناگواری نہیں ہے ان کے دل کے اندر اس کے لیے. تو یہ ضروری ہے کہ پہلے برائی کو جانا جائے, تو علم ضروری ہوا آپ کے لیے کہ منکرات بھی کیا ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس برائی سے نفرت بھی رکھتے ہوں. ایسا نہیں ہو کہ برائی آپ کے سامنے ہو رہی, ہم تو نہیں نا کرتے, ہم تو نہیں رشوت لیتے, ہم تو نہیں یہ برا کام کرتے, میں تو نہیں کرتی, یہ کافی نہیں ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, یہ کافی نہیں ہے. اور اگر یہ کافی ہوتا تو پھر تو یہ کہہ دیا جاتا بھی تم اپنے اپنے کرو. دیکھیں, یہاں سے پتا چلتا ہے کہ امت مسلمہ سیلفش نہیں ہو سکتی کہ میں تو نیک بن جاؤں اور آپ بھی نیک بن جائیں, آپ اپنے گھر میں اللہ اللہ کرتی رہیں, میں اپنے گھر میں اللہ اللہ کرتی رہوں, بس ہم خود تو نیک ہیں نا, ہمیں کیا بھائی, تجھے پڑھائی کیا, پرائی کیا پڑھی ہے اپنی نبیڑ تو, ہے نا, تجھے کیا, دو لوگ جو مرضی کر رہے ہیں تم اپنی کام کر, یہ آج کل کہا جاتا ہے نا. لیکن جب ہم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ سن لیا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھ کے کیا فرمایا تھا, جس کو یہ پسند ہے کہ اس امت میں سے ہو, اسے اللہ کی اس شرط کو پورا کرنا ہوگا, کرنا ہوگا. ہم, میں اور آپ خود اپنے اپنے جگہ نیک بن کے صرف رہ کے اور یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم بس کافی ہے یہ ہمارے لیے, نہیں, اس سے آگے ہمیں بڑھنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے, دوسروں کو بھی معروف کی دعوت دینی ہے. کہیں حکم دے کے کریں گے, کہیں دعوت دیں گے, کہیں بلائیں گے. جب آپ کسی کو قرآن کی طرف بھی بلاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں, سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے, سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے, آپ اس کو معروف کی دعوت دے رہے ہیں.